बच्चों की गर्दन में अब खिंचाव या कोई मसला जब पेश आता है, इस बीमारी का नाम क्या है और ये क्या चीज़ है?
इसको मेडिकल की इस्लाह में हम राई नेक या टॉर्टिकोलस ये बीमारी कहते हैं। आमतौर पे होता यह है कि बच्चों में ये मसला एक ख़ास उम्र तक होता है। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ख़तरनाक हो जिससे मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम बने, लेकिन अगर इल्म ना हो तो एक ख़ास अंदाज़ में बच्चों की गर्दन रहती है, क्योंकि पट्ठा एक तरफ का छोटा होता है, एक तरफ का अपनी असल हालत में रहता है। लेकिन अगर इस बारे में आगाही हो तो उसको 1 साल की उम्र तक जो है उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या इसके दूसरे जो हल हैं वो सारे तरीका इलाज जो है उसके उस बुरे कार लाते हुए तो उसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। और
जी
इसकी शरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 100 में से मतलब कोई एक बच्चा इस तरह इसको इस मसले का शिकार होता है। लेकिन अगर एक भी बच्चा इस मसले का शिकार हो और उसको इल्म ना हो और ला इल्मी की वजह से पेचीदगियाँ हों तो बहुत बुरी बात है, इसलिए हमें इस बारे में भी आगाही होनी चाहिए।
बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। एक चीज़ आपने कहा 1 साल के दरमियान, तो मेरे जहन में सवाल आया, आया ये पैदाइशी तौर पर या पैदाइश का जो वो मरहला होता है उसमें कोई गड़बड़ अगर हो तो ये जो है मसला सामने आता है?
ये भी मुमकिन होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बच्चेदानी में होता है, वहाँ पे उसका सर अपनी असल हालत में ना हो, एक तरफ को एक किसी भी गैर आदी हालत में एक तरफ को मुड़ा हुआ हो, एक तरफ को झुका हुआ हो, तो ये होता है कि एक जिस तरफ झुका हुआ है उस तरफ वाला जो हिस्से हैं वो शॉर्ट रह जाते हैं, छोटे होते हैं, दूसरी तरफ के तो वो लंबाई में चले जाते हैं क्योंकि वो लगातार एक स्ट्रेचिंग में होते हैं। तो उसकी वजह से जब बच्चे की पैदाइश होती है तो फिर उसको अपनी असल हालत में आने में वक्त लगता है, या जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो उसके बाद माँ महसूस करती है कि बच्चा एक तरफ गर्दन को जब घुमाता है तो वहाँ पे वो इजी फील करता है, सुकून में रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी गर्दन दूसरी तरफ मुड़ती है और इस तरह की जो हालत है, ख़ास तौर पे जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उस वक्त महसूस करती है या लिटाती है, एक तरफ को बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है। बच्चा हमेशा इस उम्र का वो बता तो नहीं सकता, वो रो के अपने जो भी है मसला उसका इजहार कर रहा होता है।
बिल्कुल
तो एक तरफ को बच्चा रोता है और एक तरफ को वो सुकून में रहता है, तो उससे शक किया जा सकता है कि बच्चा जो है इस गर्दन की जो खास हालत है उसमें तकलीफ महसूस कर रहा होता है। और ऐसा नहीं है कि ये हालत सिर्फ बच्चों में पाई जाती है, ये बड़ों में भी हो सकती है। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब हम अचानक से रात सोए हैं और सुबह गर्दन की तकलीफ के साथ उठते हैं तो उस वक्त भी वो जो मसल में एक स्पाज्म आता है, एक खिंचाव आता है, तो वो भी यही मसला होता है, वो बड़ों में होता है, यही चीज़ जो है वो बच्चों में देखी जाती है। एक्यूट टॉर्टिकोलस इसको कहा जाता है। टॉर्टिकोलस ये दो अल्फाज का मजमू है, टॉर्टिस एक तरह की रोटेशन को घूमने को कहते हैं, कॉलस ये कॉलर बोन इससे लिया गया है। देखिए हमारा जो जिस्म है इसमें मुख्तलिफ तरह की हड्डियाँ, पट्ठे और सब कुछ ये मुख्तलिफ चीज़ों का मजमू
मजमू है
है।
बिल्कुल।
तो अब ये जो पट्ठे हैं दाई साइड और बाई साइड हमारी, ये दोनों अतराफ में पट्ठों का एक बैलेंस होता है। अगर खुदा न खास्ता कहीं पे भी ये मस्कुलर इम्बैलेंस होता है, एक तरफ को पट्ठा जो है वो ठीक काम कर रहा है और दूसरी तरफ ठीक काम नहीं कर रहा,
सही
या एक तरफ को स्पाज्म आ गया है, या इसकी एक आम सादा मिसाल हम ले लें कि अगर हम जूते जो पहने हुए हैं, अगर जूता एक तरफ का खुदा न खास्ता हम कहते हैं कि जूते जो है वो म्यारी नहीं है, अगर उसका गैर म्यारी होने से एक तरफ का पाँव जो है उसकी ऊंचाई कम है, ज़्यादा है,
बिल्कुल
या एक तरफ को थोड़ा सा वो घिसा हुआ ज़्यादा है, तो जब फर्द चल रहा होता है तो उसकी चाल की वजह से जो एक इम्बैलेंस सा जो
बिल्कुल
पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके जो जिस्म पे ख़ास तरह की जो है अजाफी कुव्वतें वो असरअंदाज हो रही होती हैं। एक रेपिटेटिव के साथ ट्रामा जो है वो चोट किसी खास हिस्सों पे लग रही होती है। पट्ठों का भी इसी तरह होता है कि अगर एक तरफ के पट्ठे छोटे हो जाएं और एक तरफ के अपनी असल हालत में हैं तो एक जो कुदरती चाल होती है या कुदरती कोई भी हरकत होती है तो वो सही तरह से अंजाम नहीं पा रही होती और जिसकी वजह से खास हिस्सों पे चोट आ रही होती है। अब गर्दन वाले हिस्से की बात करें तो गर्दन में भी जो दोनों अतराफ गर्दन जो है सामने भी और पीछे भी,
बिल्कुल
इनको पट्ठों ने सहारा दिया होता है। असल जो ढांचा होता है हड्डियों का होता है, हड्डियों के साथ जो है पट्टे छोटे छोटे जो उसमें लिगामेंट्स वगैरह वो पाई जाती हैं, सारे जो तमाम की तमाम साख्ते हैं इनमें कभी भी किसी जगह पे कोई चोट लगती है, अगर लिगामेंट में हो तो स्प्रेन उसको कहते हैं, पट्टों में हो स्ट्रेन, तो उस चोट के असर के बाद जो है इस तरह के स्पाज्म आते हैं। ये एक तरह का जो है एक हिफाजती अमल होता है, मसला हमें जब हमें खांसी आती है, जब हमें बुखार होता है, जब पट्टा जो है कहीं पर सोजिश हो जाती है, जिस्म का एक मुदाफियाती निज़ाम होता है कि कहीं पे भी जिस्म को कोई मसला बनता है तो अपने दिफा के लिए एक खास तरह की हालत में वो चला जाता है।
क्या वजूहात हैं कि इस पट्टों में जो है खिंचाव या भी किसी भी किस्म का जो है मसले का जो है वो सामना करना पड़ता है बच्चों को?
इसके बारे में कोई एग्जैक्ट मेडिकल ने कोई वजह नहीं बताई कि मसल ये वजह हो सकती है। जिन चीज़ों पर शक किया जा सकता है, एक तो वो वरासती असरात मौरूसी, जिससे बाज जीन्स की वजह से खास पट्टे जो हैं वो छोटे होते हैं, बाज को किसी खास पट्टे में जिस तरह गर्दन की हम बात कर रहे हैं तो गर्दन के एक तरफ का जो पट्टा है उसमें खास तरह के जो फिब्रस टिश्यूज़ हैं वो डिवेल्प होना शुरू हो जाते हैं, एक मासा बन जाता है जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक दर्द की शिकायत रहती है। बाज में मसल जो ग्लैंड जो है लिम्फ नोड्स वगैरह ये इसमें सोजिश आ जाती है, कोई गले में बाज बच्चों को या मसल बड़ों को भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होती है तो उसकी वजह से एक, या फिर ये होता है कि किसी तरफ कोई छोटी मोटी चोट लगी वो डिलीवरी के दौरान हो सकता है या उसके बाद जो है वो, चूँकि 3 माह की उम्र तक तो बच्चा अपनी गर्दन को पूरी तरह स्टेबल नहीं कर सकता तो उठाते हुए किसी तरह भी वो एक चोट लगी तो फिर वो बच्चा उस जब उसको स्ट्रेच में अपनी असल हालत में जाता है तो वहाँ तक नहीं ले जाने देता, कोशिश होती है कि एक तरफ कोई गर्दन रहे, तो वो जब ज़्यादा दौरानी के लिए वहाँ पर सोजिश होती है या वहाँ पर दर्द का एहसास होता है तो उसी तरफ वो इस तरह की हालत वो रहती है। तो ये एक्वाइड भी हो सकता है जैसे मसल दर्द वगैरह की वजह से, उससे पहले वक्फे से पहले जिस तरह हमने बात की कि लगातार अगर बच्चेदानी में बच्चे की खास पोजीशन रहती है तो उस सूरत में भी हो सकता है। फिर इस तरह बड़ों में भी अगर बात की जाए तो बड़ों में जैसे खास हालत में बुरी हालत में सोने की वजह से लगातार जो है एक ही हालत में सोए हुए हैं, या अगर किसी ने वज़न एक ख़ास हालत में उठाया हुआ है, कोई वजनी बैग एक तरफ को उठाया हुआ है, गर्दन फिर वो जिसम बैलेंस करने के लिए गर्दन को बास लोग वो दूसरी तरफ को लेके जा रहे होते हैं तो किसी खिंचाव की वजह से किसी चोट की वजह से, तो इस तरह की हालतों में ये होता है कि इस तरह का मसला सामने आता है और ये ज़्यादा लंबा देर है, ज़्यादा दौरानी के लिए ये नहीं रहता, तकरीबन 24 घंटे से 48 घंटे तक इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है, खुद बखुद बेहतरी आना शुरू हो जाती है क्योंकि जिसम का एक अपना दिफाई निज़ाम होता है। जब सोजिश आती है किसी खास हिस्से में उसका भी मकसद ये होता है कि यहाँ पे एक चोट लगी है और इसको वक्त दिया जाए ताकि वो जो हिस्सा है वो अपनी असल हालत में ठीक हो जाए, तो उसके बाद जो है वो सोजिश आसा आसा ख़त्म होना शुरू हो जाती है। लेकिन उस सोजिश को फिर जब सोजिश होती है तो उसके साथ दर्द का एहसास होता है, फिर दर्द को कम करने के लिए फिर मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो बुनियादी वजूहात हो सकती हैं जिन पर शक किया जाता है वो ये हैं। अब इलामात पे अगर बात की जाए तो इलामात में जिस तरह हमने बच्चों की बात की कि बच्चा एक तरफ को गर्दन वो नहीं घुमाता, इसकी जो ज़ाहरी जो शक्ल सूरत होती है, जो जिस तरह से मरीज़ प्रेजेंट कर रहा होता है उसमें गर्दन को उसने एक तरफ को वो घुमाया होता है और एक तरफ को तकरीबन झुकाया होता है, तो ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइट जो मसल्स हैं ज़्यादातर मसला इनमें पेश आता है, तो ये शक्ल जब आती है तो उसमें ज़्यादा बेहतर तौर पे हमें समझने में मदद मिलेगी। तो उसमें यह होता है कि एक तरफ को जब उसको मसला होता है तो उसी तरफ को जो है वो कोशिश करता है कि वो पट्टा जो है
उस
तरफ जिस तरफ दर्द है तो उस तरफ को जो है वो घुमा के रखता है, तो उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है गर्दन को हम वो मुख्तलिफ अतराफ में जो घुमा सकते हैं तो उस रेंज ऑफ मोशन में अच्छी खासी कमी आती है, लेटने में सोने में एक तरफ को वो मसला पेश आ रहा होता है, तो जो इसकी चीदा चीदा इलामात जो होती हैं इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई मसला है। और अगर हमें इस जो ये जो बीमारी है या ये मसला कह लें इसके बारे में आगाही हो तो उसका जो सुदेबाप है वो हम आसानी के साथ कर सकते हैं, सादा सी पोजिशनिंग के साथ, जो सादा सी एहतियात जो है उसके साथ इस मसले को जो है हल किया जा सकता है।
सही, हमारे साथी अभी तस्वीरें भी चलाएंगे। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, ऐसे बच्चे जो माँ के पेट के अंदर ब्रीच पोजिशन में रहते हैं और उनकी नॉर्मल पोजिशन नहीं रहती, आया उनके साथ ये मसला पेश आ सकता है?
उनके साथ जो है ہے ان کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اور اس میں اس طرح یہ جو حالت ہوتی ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ بریچ پوزیشن میں ہو, اسی میں اگر وہ گردن کی پوزیشن ایک طرف دوسری طرف جاتی ہے تو اس میں یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. لیکن بریچ پوزیشن کی وجہ سے ہاں جب ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ مسئلہ پیش آتا ہے, کیونکہ اس میں چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ڈلیوری جو ڈلیوری کا عمل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پرولونگ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے, تو بریچ پوزیشن سے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. جس طرح آپ شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو رائٹ سائڈ ٹارٹیکولس اس میں دکھائی گئی ہے, دیکھیں وہ جب وہ دائیں طرف ہے تو اس نے جو اپنا اس کا جو کان ہے اس کے کندھے کے زیادہ قریب جو ہے ایک طرف کو, اور دوسری طرف جو ہے گردن اس نے روٹیٹ کی ہے اپوزٹ سائڈ پہ. تو اس طرح کی ایک خاص حالت ہوتی ہے بچوں میں, اور جس طرح ہم نے علامات پہ بھی بات کی کہ وہ ایک خاص طرف جب اس کو لٹاتے ہیں, اگر فرض کریں کہ اسی بچے کو جب ماں دودھ پلاتی ہے اور اس کو دائیں طرف یعنی دایاں سر جو ہے اس کا نیچے ہے ماں کے بازو کے اوپر, تو جب دایاں سر نیچے جائے گا تو اس کا ایک خود بخود عمل کیا ہوگا, میں ایک سٹیچ آئے گی اس میں کھچاؤ ایک طرح کا آئے گا. جب وہ کھچاؤ آئے گا تو وہ جو پٹھا ہے وہ درد ظاہر کرے گا, بچے کو درد کا احساس ہوگا تو اس کے ساتھ بچہ روئے گا. اب اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف اگر اس کو لٹایا جائے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو دائیں طرف ہے وہ چھوٹی حالت میں ہی رہے گی, سر تو اس طرف رہے گا تو اس میں اس کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. جو پہلی ایک تصویر گزری ہے اس میں مختلف طرح کے اس کی اقسام جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ کوئی ماں کے پیٹ سے ہو سکتی ہے کنجینیٹل, پھر ایکوائرڈ بھی ہو سکتی ہے, پھر دوسری طرح سے. اب جس سٹرنم اور سٹرنوکلیڈوماسٹائٹ کی میں بات کر رہا تھا, یہ جو پٹھا دکھایا گیا ہے سرخ رنگ میں, یہ اس کا جو میڈیکل کی اسلام میں میڈیکل نام سٹرنوکلیڈوماسٹائٹ ہے. یہ نیچے جو کلیویکل بون ہے سامنے والی جو کالر بون ہے اس کے ساتھ یہاں سے اس کے جو حصہ ہوتا ہے آگے سٹرنم یہاں سے شروع ہو کے اور اوپر جو ہے سر کی ایک ہڈی ہوتی ماسٹائڈ وہاں تک جاتا ہے, اور اس کا جو اصل کام ہوتا ہے ایک طرف کو جیسے مثلا گردن کو گھمانا ایک طرف کو لے کے جانا. تو اب جب اس میں ایک چونکہ دو ہوتے ہیں تو ایک طرف کے پٹھے میں جب مسئلہ بنتا ہے تو اسی لیے جو ہے وہ گردن ایک طرف کو جھکی ہوئی اور دوسری طرف کو گھومی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ والا جو مسئلے ہیں اگر بڑوں کو اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے, اور اس حالت میں یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ اس حالت میں اگر اس کو ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے تو کوشش کریں کہ ڈرائیونگ نہ کریں, کیونکہ ایسی حالت میں گردن کی رینج آف موشن جو حرکت کا دائرہ ہوتا ہے وہ اچھا خاصا محدود ہوا پڑا ہوتا ہے, اور اس دوران اگر خدا نہ خواستہ اچانک سے اس کو ٹرن کرنا پڑے اور وہ نہیں دیکھ پاتا تو اس میں کسی حادثے کا بھی وہ شکار ہو سکتا ہے. اور اس تصویر میں ایک طرح کی اس میں وہ علاج ایک طریقہ علاج بھی دکھایا گیا ہے کہ سٹریچنگ جو ہے اس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تقریباً 10 سے 15 بار سٹریچنگ اگر دن میں 2-3 دفعہ انجام دے دی جائے 10 سیکنڈز کے لیے 10 سے 15 سیکنڈ کے لیے, اور بڑی ملائم سی شروع میں یہ ہوتا ہے کہ فیزیوتھراپسٹ اس کا اصل جو سٹریچنگ اس کا علم تو فیزیوتھراپسٹ کو ہوتا ہے, ڈاکٹروں کو بھی ہونا چاہیے, تو وہ اگر یہ انجام دیتا ہے اور فیملی ماں وہاں پہ ہوتی ہے اور اس کو بھی علم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انجام دے رہا ہے تو اس کو وہاں پہ کلینک پہ انجام دے اور اس کے بعد جو ہے ماں اس کو گھر پہ انجام دے تو یہ اس میں اچھی خاصی بہتری آتی ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی تشخیص ہوتی ہے, تشخیص کے لیے تو ایک میڈیکل ہسٹری سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے کہ بچے کی, حتیٰ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی ڈلیوری کا سارا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاتی ہے, پھر معالج اس کی جو علامات ہوتی ہیں اس کو دیکھتا ہے, تو اس بنیاد پہ جو ہے اس کی تشخیص کی طرف جایا جاتا ہے.
تشخیص پہ ہم گفتگو کر رہے تھے, میں چاہوں گی آگے بڑھائیں.
جی, اب تشخیص کے لیے فزیکل ایگزامینیشن, پھر ڈیفرینشیل ڈائگنوسس, یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسری اس طرح کی بیماریاں جو ہیں, آیا ایسا نہیں ہے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جن کے علامات جو ہیں وہ ایک طرح مشترک سی ہوتی ہیں, وہ ایک ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. تو بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مسکلوسکیلٹن کے مسئلے ہوتے ہیں, خاص طور پہ ہپ ڈسلوکیشن ہونا یا کلب فٹ وغیرہ, پاؤں کا ٹیڑھا پن, اور اس کے بعد یہ جو ٹارٹیکولس ہے یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس طرح کا. اب وہ چونکہ وہ زیادہ فوری طور پہ اس کی جو جب مسئلہ پیش آتا ہے تو اس کی علامات شدید ہوتی ہیں, مسئلہ پیچیدہ ہوتا ہے, تو اس پر ہماری توجہ ज़्यादा जाती है, तो इसकी तरफ बास माओं को पता भी नहीं चलता। तो फिर मॉलिज ये करता है कि एक्सरे वगैरह, एक्सरे की यहाँ पे ज़रूरत तो खैर नहीं होती, लेकिन ये बास का ये देखा जाता है कि किसी खास हड्डी में कोई मसला ना बना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन असल जो तशखीस है अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए, जो मस्कुलर अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, या फिर MRI के ज़रिए जो है वो हतमी तशखीस दी जा सकती है।
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम इलाज की तरफ चले, मैं एक चीज़ जो मैंने बहुत देखा है पाकिस्तान में, ये चीज़ होती है कि जब बच्चा छोटा, अभी ऐसा ही इसी उम्र का जो बच्चा होता है नवजात, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ तेलों से मालिश देना उसको, अब गर्दन के हिस्से में या पैर के किसी हिस्से में, अब चाहे ये मसला हो या ना हो। तो अगर मिसाल के तौर पर बच्चे के साथ ये मसला पेश आ रहा है और माँ को पता नहीं है, वो मालिश दे रही है, इससे जानकारी बिल्कुल नहीं है, तो क्या ये मसला बिगड़ सकता है आगे जाके?
देखिए, जो मसाज है और हमारे मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा आम है, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, ख़ास तौर पे इस उम्र के बच्चों के लिए। उसमें जो बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जो पट्टे हैं उसकी मजबूती के लिए, और ख़ास तौर पे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तेज़ होती है, उसी के ज़रिए ग़िज़ा जो है जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुँचनी होती है, तो उससे बच्चे में एक मजबूती पैदा होती है। लेकिन यहाँ पर जो, और बहुत अच्छा सवाल था आपका, और यहाँ पे जो अहम नुक्ता है, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में, बच्चों में भी बड़ों में भी कोई चोट लगी है, और चोट के बाद जो है वहाँ पे सोजिश आई है, और सोजिश के बाद आमतौर पे लोग कह रहे होते हैं कि आप जो है मसाज दे दो, तो वो जो है वो मसाज नहीं देना चाहिए वहाँ पे, चूँकि जो सोजिश का अमल होता है वहाँ वो एक तरह का एक हिफाजती उन्होंने हिसार दिया होता है पट्ठों ने, अगर उसको आप मज़ीद उसको मलते हैं, उस पर मसाज देते हैं, तो उससे ये होगा कि वो सोजिश का अमल मज़ीद बदतर होता जाएगा। यानी हमें उसको एक तरह से रेस्ट देना चाहिए ताकि वो सोजिश अपना एक खास वक्त लेके वो कम हो जाए, लेकिन अगर उसी हिस्से को हम मसाज देते रहेंगे तो उसकी वजह से वो सोजिश कम नहीं होगी, मजीद जो है वो बढ़ती जाएगी, या उसका दौरानिया लंबा हो जाएगा,
बिल्कुल जख्म की तरह उसको खोलने वाली बात।
बिल्कुल, और बिल्कुल ये वाला जो मसला होता है इसमें, चूंकि ये मसला फिर क्रोनिक हो जाता है, आमतौर पर हमने बात की कि ये जो अगर तो एक्यूट हो, एक्यूट होता है कि किसी खास ड्यूरेशन के लिए, वो तो 24 घंटे से 48 घंटे यहाँ तक जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है, या एक हफ्ते तक ये ठीक हो जाता है बड़ों में भी, खास तौर पे बच्चों में इस तरह का मसला जो है वो एक साल की उम्र तक वो बेहतरीन हालत में जो है वो बहबूदी की तरफ चला जाता है, तो उसमें उसकी जो स्ट्रेचिंग है वो सबसे अच्छी हिकमत अमली होती है, और जो उसका मसाज है दूसरे अतराफ में मसाज उसका बेहतर है, लेकिन हल्का हल्का मसाज अगर वो पट्ठे पे दे दिया जाए तो वो बेहतर है, लेकिन उसको अगर ख़ास हिस्से पर ज़रूरत से ज़्यादा जो है उसको रगड़ेंगे तो वहाँ पर वो सोजिश का अमल तेज़ होएगा, और स्पाज्म जो है वो भी एक तरह की सोजिश ही होती है।
सही, यहाँ पर इलाज पर गुफ्तगू करते हैं, अगर किसी को मसला पेश आ रहा है बच्चा या बड़ा, इलाज क्या है इसका?
देखिए, बच्चों के लिए, बच्चों को दवाइयाँ तो नहीं दी जा सकती होती हैं ख़ासतौर पे इस उम्र में, तो उनके लिए बेहतरीन जो इलाज है वो स्ट्रेचिंग है, यानी माँ को इल्म होना चाहिए और साथ उसकी पोजिशनिंग, यानी अगर बच्चा गर्दन के ख़ास हिस्से में उसको मसला है तो उसकी जो बरक्स, यानी उसको तकरीबन एक तरह के खचाव की तरफ हालत में रहे, तो उस तरह की हालत में उसको लेके जाया जाता है, और मुख्तलिफ तरह के ब्रेसेस वगैरह और गर्दन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनका भी इस्तेमाल करवाया जाता है, ख़ास तरह के तकिए जो हैं जिसकी वजह से वो गर्दन एक अपनी असल हालत में रहे, और उस तरफ जो है एक कंधे और कान के दरमियान जो फासला है तो वो जो कम हुआ है उसको ज़्यादा किया जाए, और माँ ख़ास तौर पर दूध पिलाते हुए जिस तरफ बच्चा रोता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसी तरफ उसको ज़्यादा रखे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ाती जाए। अगर हम दर्द की वजह से हम कहते हैं कि जो उस हालत में ना ले जाया जाए और जहाँ पे बच्चे को सुकून है तो उसी हालत में रखा जाए, तो उसके जो लंबे दौरानी के लिए उसके फिर बुरे असरात मुरतब होंगे, और गर्दन जो है बच्चे की एक तरफ उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो पट्ठा भी इजाज़त नहीं दे रहा, तो कोशिश करनी चाहिए। और अगर वो बच्चा जब वो TV वगैरह की तरफ दिलचस्पी लेना शुरू होता है, कार्टून वगैरह, उस तरफ भी TV और उसके बेड को या उसका पंगूड़ा वगैरह उसकी डायरेक्शन इस तरह रखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिस्से को हमने स्ट्रेच पे लेके जाना है, जिसको लंबा करना है, तो उसको वो गर्दन को दूसरी तरफ घुमाए ताकि वो हिस्सा जो है उसको खेलकूद के दौरान इसी तरह उसको महसूस भी ना हो रहा हो और वो हिस्सा अपनी असल हालत में आ रहा है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पर, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपसे जबरदस्त गुफ्तगू रही और नाज़रीन को गुफ्तगू पसंद आई।